नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबीसी। आज का न्यूज मेकर में चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की, जो अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज का न्यूज मेकर में चर्चा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा की, उसके अब तक के संघर्षशील अतीत और वैभवशाली वर्तमान की। 1980 में जन्मी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा का दावा है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं और इस लिहाज से देश की आबादी का तकरीबन 13% हिस्सा भाजपा का कार्यकर्ता है। मौजूदा वक्त में भाजपा के 12 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। भाजपा का वैभवशाली काल शुरू हुआ जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी में सदस्यों की संख्या तकरीबन 6 करोड़ बताई गई। बीते 7 साल में पार्टी ने 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य जोड़े हैं। वैसे अटल आडवाणी के दौर से तिल तिल संघर्ष करती बीजेपी अब मोदी शाह युग तक पहुंच चुकी है। कभी संसद में 2 सदस्यों वाली पार्टी अब 303 सदस्यों का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहाँ तक कि राज्यसभा में भी पार्टी ने 100 सदस्यों की संख्या बना ली है। इन 42 सालों में पार्टी के सांसदों की संख्या 15,000% बढ़ी है। 6 अप्रैल 1980 को भारत के सियासी मंच पर एक नई पार्टी का उदय हुआ। भाजपा 4 साल बाद अपने पहले आम चुनाव में उतरी। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटें पाई। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी खुद मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के माधवराव सिंधिया ने हराया। दिलचस्प बात ये कि आज के दौर में उन्हीं के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पूरे खेमे को साथ लेकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं और मौजूदा वक्त में केंद्र की भाजपा सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जो कभी उनके पिताजी का कांग्रेस सरकार में विभाग हुआ करता था। वैसे जब कभी भाजपा के संघर्ष के दौर की याद की जाए तो सबसे पहले आडवाणी की रथ यात्रा का जिक्र निकलता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में फैली सहानुभूति लहर में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी देश की बागडोर संभालते नजर आए। 2 साल बाद 1986 में भारतीय जनता पार्टी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी से लालकृष्ण आडवाणी के हाथों में चली गई। राजीव सरकार में बोफोर्स तोप खरीदी मामले में भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो बीजेपी ने देशव्यापी अभियान छेड़ा। नतीजा ये हुआ कि 1989 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में 2 से बढ़कर 85 सीटें हो गईं। केंद्र में बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी। 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक यात्रा शुरू की। गुजरात के सोमनाथ से 12 सितंबर को शुरू हुई राम रथ यात्रा 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर पहुंची। तब उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, जिन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। हालांकि यात्रा में शामिल कार सेवकों का जत्था अयोध्या की तरफ बढ़ता ही गया। हजारों कार सेवक 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या तक पहुंचे, जिन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोलियां चलाई और इसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कमान मुरली मनोहर जोशी के हाथ में थी। भाजपा की समर्थन वापसी के बाद केंद्र सरकार गिर गई और फिर 1991 में दोबारा आम चुनाव हुए। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें फिर बढ़ गईं। अब की बार पार्टी के 120 सांसद लोकसभा पहुंचे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपनी पैठ बनानी शुरू की और फिर पार्टी को एक राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। अगले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहुंच और दायरे को बढ़ाया। बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण के 2 राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पार्टी ने दस्तक दी। इसके उपरांत 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें एक बार फिर बढ़ी और 161 तक पहुंची। पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, हालांकि वो बाद में विश्वास मत हासिल करने में नाकामयाब रहे और 13 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इसके बाद एचडी देवगुड़ा की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो भी ज्यादा टिक ना पाई। इसके बाद दौर आया इंद्र कुमार गुजराल का, जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सभी अस्थिर सरकारें साबित होती रहीं। देश में 1998 में एक बार फिर आम चुनाव हुए और इस बार भारतीय जनता पार्टी कई दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए बनाकर कड़ी टक्कर देते नजर आए। उस समय एनडीए के साथ समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, AIADMK, बीजू जनता दल जैसी पार्टियां जुड़ी। तब उस वक्त चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 182 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सहयोगी दल AIADMK के समर्थन वापसी के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने बाद गिर गई। 1999 में देश ने फिर एक चुनाव देखे और तब 183 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संख्या को पुनः बढ़ाया। बढ़त तो मामूली थी, लेकिन NDA के घटक दलों ने मिलकर 303 का आंकड़ा छुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। वो पहली गठबंधन सरकार थी जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर आया साल 2004, जब इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। अटल जी की लोकप्रियता चारों तरफ बढ़ती रही और इसलिए NDA को लगा कि इस बार भी सरकार उनकी ही बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और NDA दोनों को झटका लगा। NDA केवल 186 सीटों पर सिमटा, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला एक और राष्ट्रीय गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA 222 सीटें जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद से लेके अब तक ये पहली बार था जब BJP की सीटें बढ़ने का सिलसिला रुका था। इस बार पार्टी को महज 138 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के 145 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। BJP ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री बनने से इनकार करते हुए मनमोहन सिंह को आगे कर दिया और इस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 4 साल बाद 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए और BJP ने वहां बहुमत का आंकड़ा पाया। ये पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी किसी दक्षिण भारतीय राज्य में सरकार बना रही थी। कर्नाटक में BJP की सरकार बनी। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में BJP ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार तक घोषित किया। वो पिछली सरकार में उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 116 सीटें मिली और UPA गठबंधन ने जीत हासिल की। मनमोहन सिंह एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि UPA 2 में UPA 1 जैसी ना तो रवानगी थी ना ही चमक। नतीजा ये कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को पार्टी का चेहरा बनाया। हालांकि उस वक्त इस बात का काफी विरोध हुआ। मोदी को पार्टी का चेहरा बनाते ही गठबंधन के एक साथी नीतीश कुमार ने NDA का साथ छोड़ दिया। चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 282 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी देश में 31% मतदाताओं का साथ लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई। हालांकि तब भी मोदी मंत्रिमंडल में तमाम सहयोगी दलों का प्रतिनिधित्व दिखता रहा। इस दौर को भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक शाइनिंग दौर माना गया। लेकिन फिर 2019 में जब चुनाव हुए तो देश में एक माहौल ऐसा बनाया गया कि ये वन टाइम वंडर सरकार रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी का वो दौर नहीं लौटेगा जिसके सपने उसने 2014 में देखे थे। लेकिन उसके ठीक पहले पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और भारत सरकार ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जो जवाब दिया, उसका भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर काफी लाभ हुआ। BJP ने अकेले दम पर 303 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 से लेकर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के दौरान से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में विस्तार करती चली गई। अभी भी पार्टी के 12 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, जबकि 4 अन्य राज्यों में BJP सत्ता में है। राज्यसभा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 100 हो चुकी है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी का सपना है कि वो विश्व के सबसे बड़े दल के तौर पर भारत को विश्व गुरु की पदवी पर पुनः स्थापित कर पाए। हालांकि इस राह में कई सारी चुनौतियां भी हैं। बढ़ती हुई महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय माहौल में देश को पुनर्स्थापित करना और कोविड काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था को उसके शिखर तक पहुंचा पाना, ये तमाम चुनौतियां आज देश की सरकार के समक्ष हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़े और विस्तारित दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कई नए दलों और सहयोगियों को अपने साथ जोड़ा है, जिनके बीच सामंजस्य बनाते हुए अपनी विचारधारा और अपने मत पर आगे चलते रहना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैसे आज सभी भारतीय जनता पार्टी को लंबी रेस के घोड़े के तौर पर देखते हैं। कई सारे राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई मजबूत विकल्प फिलहाल भारतीय राजनीति में नहीं दिख रहा। आज का न्यूज़मेकर आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।